ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। सभी बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम सब उपस्थित हुए हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष पर। सब यहाँ पर भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। वर्तमान समय में ये प्रथा है, जब जन्मदिन होता है तो हम इस प्रकार से शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। कैसे कहते हैं? हैप्पी बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे कहते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और एंजॉय करते हैं। क्या होता है जन्मदिन के दिवस? गुब्बारे लगाते हैं, फिर गुब्बारे फोड़ते हैं, केक काटते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं। तो इस प्रकार से हम सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम सोचते हैं बहुत ही शुभ दिवस है इस जगत में हमारा आना, लेकिन वास्तव में इस जगत में आना तो शुभ दिवस नहीं है। जब हम किसी को कहते हैं हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो, तो उसका वास्तविक संदेश यह है कि आप मृत्यु के करीब जा रहे हैं। आपकी जीवन आयु का एक साल जो है वो खत्म हो गया। धीरे 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 आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो एक बर्थडे, फिर उसके बाद दूसरा बर्थडे, फिर तीसरा बर्थडे, इस प्रकार से सारे बर्थडे आते जाएंगे और एक दिन आएगा डेथ डे, एक दिन मृत्यु का दिवस आएगा। और मृत्यु के बाद फिर एक और बर्थडे, एक और शरीर हमको लेना पड़ेगा। और इस प्रकार से हम इस भव बंधन में जन्म मृत्यु चक्कर में फंस जाते हैं। तो जन्मदिन, फिर मृत्यु दिन, और धीरे धीरे जब मृत्यु के बाद कोई हमको नहीं जानेगा, कोई पहचानेगा नहीं, कुछ साल तक कोई याद करेगा कैसे कोई व्यक्ति थे, थोड़ा सा दो मिनट शोक मनाएंगे, लेकिन इसके बाद कोई हमको याद नहीं करेगा। और वास्तव में ये जो जन्म की प्रक्रिया है ये भी दुखमय है। हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे, लेकिन हैप्पी बर्थ नहीं होता है। बर्थ तो बहुत ही कष्टमय स्थिति है। अगर हम शास्त्रों में पढ़ेंगे तो एक जीव प्रार्थना कर रहा है, जीव एक प्रकार के थैले पे है, मल मूत्र रक्त इसके थैले में बंधा हुआ है। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि इस नर्क की स्थिति से मुझे बाहर निकालिए और मैं बाहर आके आपकी सेवा करूंगा। लेकिन जन्म के साथ तुरंत ही विस्मरण हो जाता है। तो वास्तव में इस जगत में जो जन्म है वो हैप्पी नहीं है, फिर भी हम मनाते हैं वर्तमान सभ्यता में। तो क्या भगवान का इस जगत में आना भी इसी प्रकार से है, हैप्पी बर्थडे? नहीं, भगवान और हमारे इस जगत में आने में बहुत ही भेद है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि वे हमारी तरह प्रकृति के बंधन से जन्म नहीं लेते हैं। भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, भगवान ये बताते हैं कि अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममायया। मैं यहां पर कैसे आता हूं? अजह, मेरा जन्म नहीं होता है, हमारा जन्म होता है, लेकिन भगवान का हमारी तरह से ये जड़ पदार्थों का शरीर नहीं होता है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे हम देखते हैं कि सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है, सूर्य तो हमारी आंख से ओझल हो जाता है और फिर एक समय पर हमको हमारी दृष्टि में आता है, तो हम हमारी दृष्टि के अनुसार निर्धारित करते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है और सूर्य का अस्त हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्व द्वीप से, पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है, वो तो हमारी दृष्टि में है, सूर्य हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, हमें दिखता है और नहीं दिखता है। इस प्रकार से भगवान सदैव है लेकिन हमें नहीं दिखते, जब हमारे सामने प्रकट होते हैं तो हम कहते हैं भगवान का जन्म हुआ, लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो अजन्मा हूं, अजोपि सन अव्ययात्मा, और मेरे शरीर का कभी नाश नहीं होता है। हमारा जो शरीर है वो नाशमय है, जन्म हुआ और कुछ ही साल के बाद वृद्धावस्था और फिर मृत्यु, तो हमारा शरीर है व्यय, भगवान का शरीर है अव्यय, उसका कभी नाश नहीं होता है। और भगवान कहते हैं भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं भूतानाम, भूतानाम का अर्थ है जिन्होंने शरीर धारण किया है, पंच महाभूत का जो शरीर है, जो बहिरंग का शरीर, हमारा स्थूल शरीर, तो जिन्होंने ये शरीर धारण किया है उनको कहते हैं भूतानाम, हम सब हैं भूतानाम। भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं इन जीवों में जिन्होंने शरीर धारण किया है उनके बीच में आता हूं, और जब मैं इनके बीच में आता हूं तो वो सोचने लगते हैं कि मैं भी इन्हीं की तरह एक साधारण व्यक्ति हूं। देखो कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण की बचपन की लीलाएं हैं, कृष्ण की युवावस्था की लीलाएं हैं, हम भी ऐसा करते हैं, हमारा जन्म होता है, हमारा बचपन है, हमारा नवयुवक अवस्था है, हाँ, तो हम सोचते हैं कि कृष्ण भी हमारी समान एक ही है, कोई भेद नहीं है, जो कृष्ण करते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, भेद है। भूतानाम, मैं इन बद्ध जीवों के बीच में जरूर आता हूं और ऐसा प्रस्तुत होता है कि मैंने शरीर धारण किया है, लेकिन ईश्वरोपि सन, मैं इन सबका ईश्वर हूं, मैं सबका नियंता हूं, ये सब नियंत्रित हैं, मेरी बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा ये सब जीव नियंत्रित है, लेकिन मैं ये बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव में नहीं हूं, ये भेद है। तो भगवान ये दिव्य ज्ञान बता रहे हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्ममायया। तो मेरी आत्ममाया स्वयं की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से मैं इस जगत में आता हूं अपनी इच्छा से, और अपनी इच्छा से मैं यहां से चला जाता हूं, जबकि हमारे जैसे बद्ध जीव है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के माध्यम से इस जगत में आते हैं, और इसमें हमारी इच्छा नहीं है। यहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि मैं इस जगत में अपनी इच्छा से आया, किसी को नहीं पूछा गया, एक दबाव से उसको भेज दिया गया, और इसी प्रकार से जब प्रकृति की इच्छा के अनुसार ये शरीर भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये भेद है हमारे और भगवान में इस जगत में आने। कई लोग हैं जो कहते हैं भगवान इस जगत में आते ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं भगवान का इस जगत से कोई संबंध नहीं है, भगवान इस जगत में कभी नहीं आते। लेकिन जब हम ये कहते हैं भगवान इस जगत में नहीं आते तो हम भगवान की असीमितता पर सीमा लगा रहे हैं। भगवान मतलब जिनके लिए सब कुछ संभव है, भगवान ये सृष्टि करते हैं और इस सृष्टि के मध्य भी आते हैं, फिर भी इस सृष्टि के स्वामी है और इस सृष्टि से अछूते हैं, यही भगवान की विशेषता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं पश्यम मे योगम ऐश्वरम, मेरा ये ऐश्वर्य क्या है, देखो ये जगत मुझसे आता है फिर भी मैं इस जगत में आता हूं, ये जगत मुझसे संबंधित है लेकिन मेरा इस जगत से कोई संबंध नहीं है, ये मेरा दिव्य स्वभाव है। तो भगवान बताते हैं कि वो इस जगत में आते, लेकिन कई लोग कहते हैं भगवान इस जगत में नहीं आते, भगवान की जो असीमितता है उस पे सीमा लगा रहे हैं। लेकिन ये भगवान की परिभाषा नहीं। भगवान के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो असंभव है। हम इस जगत में आते हैं, हमारे पास कुछ विशेषताएं, अगर वो विशेषताएं भगवान में नहीं है तो हम भगवान से अधिक हुए और भगवान हमसे अधीन हुए। तो ये भगवान की परिभाषा है, उसके प्रति विरोधाभास है। तो भगवान इस जगत में आते, भगवान को इस जगत में आने का कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी मजबूरी से इस जगत में आते हैं, जैसे हम आते हैं, हम हमारे कर्म फल के कारण इस जगत में नाना प्रकार के शरीर ले रहे हैं, लेकिन भगवान की स्थिति ऐसी नहीं है। भगवान अपनी परम करुणा के कारण इस जगत में आते हैं, हमारा कल्याण करने के लिए, हमारे लाभ के लिए भगवान इस जगत में आते हैं। वास्तव में हम सब लाभ या परम आनंद की खोज में, हम सब किसी प्रकार का आनंद खोज रहे हैं। बचपन में किसी प्रकार का आनंद खोज रहे हैं, कुछ खिलौने से आनंद खोज रहे हैं, नवयुवक अवस्था में मित्रों के साथ, हम देखते हैं स्कूल कॉलेज में तरुणा तरुणी या आकर्षण में हम आनंद खोज रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है, जो आनंद बचपन में आता था खाने में, एक चॉकलेट खाने में, कुछ केक खाने में, आइसक्रीम खाने में, अभी वो आनंद का परिवर्तन हो रहा है। फिर थोड़े बड़े होते तो साइकिल चाहिए, कुछ अच्छा बैग चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, तो ये आनंद का परिवर्तन हो रहा है। फिर और नवयुवक अवस्था में, जैसे हमने बताया, तरुणा तरुणी पुरुष और स्त्री आकर्षण में, दाम्पत्य जीवन में पुत्र से पुत्री से आसक्ति, फिर थोड़े समय बाद वो आसक्ति कम हो जाती है और फिर पौत्र से और पौत्री से आसक्ति बढ़ती है। इस प्रकार से हमारी आसक्तियों का परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हम वास्तव में आनंद की खोज में हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि परम आनंद क्या है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं हमको वास्तव में परम आनंद प्रदान करने के लिए। वास्तव में परम आनंद है श्री कृष्ण स्वयं, वे सभी आनंद के आगार हैं। इसलिए भगवान का नाम है रसराज। आनंद का मतलब है रस, शास्त्रों में वर्णन है रसो वै सह, भगवान पूर्ण रस से भरपूर है। रसो वै सह, जैसे एक आम है परिपक्व आम, तो उसमें पूरा रस है ना, कितना स्वादिष्ट है, उसे कहीं से भी हम लेंगे तो उसमें रस मिलेगा। तो भगवान इसी तरह से रसो वै सह, पूरे सभी रसों से ओतप्रोत है। शास्त्र कहते हैं रसो वै सह रसम ही, वे ही स्वयं रस है। तो भगवान वो परम आनंद जिसकी प्राप्ति के लिए हम लगे हुए हैं, वो देने के लिए आते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो भगवान यहां पर हमको हमको परम आनंद परम कल्याण प्रदान कर रहे हैं दो माध्यम से, एक है उनकी शिक्षाओं के माध्यम से और एक है उनके जीवन के माध्यम से। इन दो चीजों के माध्यम से भगवान हमारा परम कल्याण कर रहे हैं, हमको परम आनंद देना चाहते हैं। सबसे पहला है उनकी शिक्षा के माध्यम से। तो भगवान हमको सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं, जिससे ये पूरा जगत अनजान है और ये इस जगत के सभी दुखों का कारण है। बहुत ही सरल शिक्षा है, लेकिन लोग इतने माया में हैं इस चीज को नहीं समझ पाते। तो भगवान की शिक्षा में भगवान सबसे पहले बताते हैं देहि नोस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको सिखा रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है। ये बहुत बड़ा ज्ञान है सबके लिए। वास्तव में हम सब इतने आसक्त हैं नाना प्रकार से, नाना अनंत कोटि जन्मों से हम ये भौतिक शरीर ले रहे हैं, तो हम बहुत आसक्त हैं इस शरीर से और हमारी पहचान पूरी शरीर से समन्वित है। बोलने के लिए हम जरूर कह सकते हैं हम कौन हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन हमारा पूरा जीवन शारीरिक चेतना में और ये हमारे दुखों का सभी कारण है। उदाहरणार्थ हम देखें न्यूज़पेपर में, हम हर रोज अलग अलग अखबार अलग अलग खबर सुनते हैं। आज यहाँ भूकंप आया, 200 लोग मर गए, एक बस खाई में गिर गई, 40 लोग मर गए, महामारी फैली हुई एक देश में। हम एक सेकंड दो सेकंड के लिए शोक करते, ओ बहुत बुरा हो गया, लेकिन अगर हमारी उंगली या हमारे दांत में कहीं दर्द है तो वो शोक हमारे लिए 1,000 लोगों के मरने से कई गुना ज्यादा है। अगर हमारे पेट में दर्द है या हमारे दांत में दर्द है, हमारे शरीर में कहीं पर भी दर्द है, तो क्योंकि हमारी इतनी शारीरिक चेतना है कि हम वो दर्द को नहीं अनुभव करते। हजारों लोग हमारे मुझे क्या लेने देना है, लेकिन मुझे जो दर्द हो रहा है अभी, मैं कौन हूं, मैं ये शरीर हूं, ये हमारी पूरी चेतना है। तो भगवान कह रहे हैं वास्तव ये चेतना में, ये चेतना कारण है हमारे दुखों का। जो शारीरिक चेतना है, शरीर मतलब इंद्रियां, शरीर का क्या अर्थ है, शरीर में महत्वपूर्ण है इंद्रियां। तो शरीर को अपना समझने में, शरीर को सुख देने में हमारी इंद्रियों को सुख दे रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं वो सुख में केवल दुख ही दुख है। सुख तो बहुत ही क्षणिक है, लेकिन अपार दुख है। भगवद गीता में भगवान समझाते हैं यही समस्पर्श जाप होगा। इस जगत में जीव भोग करने के लिए, आनंद प्राप्त करने, आनंद मतलब भौतिक जड़ रस भोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, लेकिन ये कैसा है, यही समस्पर्श जाप होगा। समस्पर्श स्पर्श से, स्पर्श से जनित सुख है उसके लिए जीव भाग रहा है, लेकिन वो सुख कैसा है, दुख योनय एवते, वो सुख नहीं देगा, वो दुख देगा। दुख कैसे देगा, आद्य अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, शुरुआत में मध्य में अंत में सभी जगह दुख है। धन कमाने में हमें लगता है धन कमा के बहुत आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन धन कमाने की प्रक्रिया की शुरुआत ही दुख है। इतना परिश्रम व्यक्ति करता है धन कमाने के लिए, और वह धन मिलने के बाद स्वप्न कर रहा अभी सुख मिलेगा, अभी सुख मिलेगा, सुख मिलता नहीं है, प्रतीत करता है जरूर। एक दूसरे को कैसे कैसे चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया चल रहा है, अगर हम किसी के जीवन में झांक के देखेंगे तो कहां सुख नहीं है, हम कल्पना कर रहे हैं कल सुखी हो जाऊंगा। और जब वो धन चला जाता है जो अवश्य हमेशा जाना है, या तो धन जाएगा या हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे, तो तब दुख होता है। अगर मान लो हमारा सारा धन चला गया तो दुख ही दुख है, ओ सब चला गया क्या हो गया, या समय आएगा जब हमको सब कुछ छोड़ के जाना है तब दुख है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि इस जगत का दुख का कारण ये है कि ये समझ बैठे हैं कि ये शरीर है, और उस शरीर को सुख देने के लिए, शरीर मतलब इंद्रियों को सुख देने के लिए वो नाना प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त है, और जिसके कारण उनको एक और शरीर लेना पड़ता है, एक और शरीर लेना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में बताया है नुन्नम प्रमत्त कुरुते विकर्म, नुन्नम मतलब व्यक्ति पागल हो गया है, नुन्नम मतलब प्रमत्त, मत्त मतलब पागल, प्रमत्त पूर्ण रूप से पागल हो, कुरुते विकर्म, विकर्म मतलब पाप कर्म करता है। यद इंद्रिय प्रीतय आप्रिनोति, केवल इंद्रियों को संतुष्ट करने में, क्या खाना क्या नहीं खाना कोई भेद नहीं, जिह्वा को क्या चाहिए बस, किसी को मारो किसी को काटो कुछ भी खाओ, क्योंकि जिह्वा को आनंद दे रहा है। क्या देखना क्या नहीं देखना, लेकिन इस आंख का क्या आदेश है उसको पालन करना, इस कान का क्या आदेश है, तो ये स्थिति है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये उसके दुख का कारण है। तो ये वास्तविक ज्ञान देने के लिए भगवान हमको, हम आते हैं जगत में इस अज्ञान से मुक्त करने के लिए, लेकिन हम पूर्ण रूप से मत्त हैं। हाँ, इस जगत में जो शरीर के माध्यम, शरीर से प्राप्त होने वाला सुख वास्तव में अपार दुख है, सुख नहीं है। श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छा उदाहरण है, एक व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है जिसके पीछे एक पागल हाथी भाग रहा है, तो व्यक्ति की जान को खतरा है, वो भाग रहा है भाग रहा है, और पागल हाथी उसके पीछे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, और वो आगे भाग रहा है, और आगे जाके रास्ता समाप्त हो जाता है, खाई है, तो हाथी से बचने के लिए वो छलांग लगाता है, क्योंकि हाथी मार देगा, और छलांग लगाता है तो वो जाके गिरता है इस एक पेड़ की शाखा पर, और पेड़ की शाखा पर वो लटक रहा है, नीचे खाई है ऊपर पागल हाथी है, और देख रहा है नीचे एक बाघ है, अगर ऊपर जाएगा तो पागल हाथी उसे मार देगा, अगर नीचे गिर गया खाई में तो मर जाएगा, अगर संभाल के भी नीचे पहुंच गया तो ये शेर उसे खा जाएगा। और वो देख रहा है कि जो शाखा पे वो पकड़ के रुका हुआ है उस शाखा को चूहे काट रहे हैं, वो शाखा भी कभी गिरने वाली पता नहीं क्या, और इतना परेशान है, और उसमें उस अवस्था में अपना मुंह खोलता है और एक शहद की बूंद, क्योंकि उस शाखा पर ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था, तो उस छत्ते की, मधुमक्खी के छत्ते से एक बूंद जाके उसकी जीवा पर गिरती है और वो रस उसको बहुत मधुर लगता है। हा, परम आनंद है। लेकिन परम आनंद कहाँ है? आप देखिए कितनी समस्या है। तो ये भौतिक जीवन या भवबंधन से तुलना की गई है श्रीमद् भागवतम में, ये हमारी स्थिति है। तो भगवान आके हमको बता रहे हैं कि वास्तविक में हमें समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। बहुत ही सरल चीज है, बहुत सरल चीज है। स्कूल में हम बच्चों को सिखाते हैं ये क्या है, ये मेरी उंगली है। अच्छा, बहुत अच्छा, आपकी उंगली है। ये क्या है, ये मेरा हाथ है। अच्छा, ये मेरी उंगली है, ये मेरा हाथ है। ये क्या है, ये मेरा शरीर है। तुम कौन हो, कौन हो तुम? आपने कहा मेरी उंगली, मैं उंगली नहीं हूं। मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं हूं। मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं हूं। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं वो चल बसे। कौन चल बसे? अब मेरे पिताजी चल बसे। ये शरीर जो भी यहां लेटा हो, ये पिताजी नहीं है। इसे जला दो, इसे दफना दो, इसे एक मिनट नहीं रखेंगे। दूसरे दिन कोई शरीर नहीं रखता है, पिताजी चले गए। कितना सरल चीज है, लेकिन पूरा जीवन हम इसी अज्ञान में कि ये व्यक्ति शरीर है, मैं भी शरीर हूं और मेरे परिवार के संबंधी ये शरीर हैं, इसलिए उनकी जो सेवा हम कर रहे हैं केवल शरीर की सेवा, अच्छे कपड़े पहना पहनाना, वो शिक्षण देना जिससे शरीर अच्छा रहे। वर्तमान में जो शिक्षण है वो क्या है, शरीर को अच्छा सजाना संवारना, शरीर को कार मिलेगी धन कमाएंगे तो, शरीर को अच्छे कपड़े पहनाएंगे तो, गॉगल्स लेंगे, मोबाइल लेंगे, लैपटॉप लेंगे, ये सब शरीर के लिए है ना। वर्तमान शिक्षा से केवल धन उपार्जन है। तो पूरा जीवन हम ऐसे जीते हैं और ये हमारे दुख का कारण है। तो भगवान हमको ये शिक्षा देने के लिए आते। भगवान कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम जीवात्मा हो। और केवल भगवान यहां तक शिक्षा सीमित नहीं रखते हैं। भगवान कहते हैं जीवात्मा है तो जीवात्मा का मूल स्वरूप क्या है ये जानना। जैसे हम देखते हैं एक चित्र है, चित्र तो एक साधारण चित्र है, वो दो डायमेंशन में है। जो थोड़ा विज्ञान समझते हैं वो देख सकते हैं कि एक है 2D, 2D मतलब दो डायमेंशन में। लेकिन उस चीज को और गहराई से समझना होगा तो 3 डायमेंशन में जाना होगा, 3D। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सब चीज हम देख सकते हैं ना। जैसे एक चित्र है और एक मॉडल है, एक पृथ्वी का चित्र है और एक पृथ्वी का वर्किंग मॉडल है, तो हम उसमें अच्छे से जान पाते हैं 3 स्तर में। तो भगवान ये चीजों को गहराई से समझा रहे। भगवान कह रहे हैं शरीर नहीं है। अधिकांश लोग ये समझते मैं ये शरीर हूं, मैं मन हूं, लेकिन आप ये नहीं है, आप जीवात्मा है। लेकिन भगवान कहते हैं यहां तक सीमित नहीं है। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा मेरा नित्य अंश है। ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः। जीवात्मा मेरा सनातन अंश है, मेरा अंश था और मेरा हमेशा अंश रहेगा। ये जीव का स्वभाव है। वास्तव में हमारा जो मूल स्वभाव है वो जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। ये शिक्षा देने के लिए कृष्ण आते हैं कि तुम मेरे नित्य अंग हो। और अंग का कार्य है पूर्ण की सेवा करना। जैसे हमारी उंगली है, ये उंगली शरीर का अंश है ना, तो शरीर का अंश होने के नाते इसका क्या कार्य है? शरीर की सेवा करना। अभी आप यहां से जाएंगे, कार्यक्रम के बाद प्रसाद लेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपने उंगली को आदेश देंगे, ये जो प्रसाद है उसको आप मुंह में रखने के लिए आदेश देंगे। ये पूरी है, हलवा है, इसको मुंह में रखो। तो उंगली का कार्य है जो पूर्ण है उसकी आगे का पालन करना, तब वो स्वस्थ अवस्था में है। जब उंगली आपके आदेश को पालन करेगी तो सब सही चल रहा है। जब उंगली आपके आदेश को पालन नहीं करेगी, इसका मतलब है पैरालिसिस, लकवा हो गया है। अब आप उंगली को कह रहे हैं खाना लेके मुंह में डालो, लेकिन उंगली उसको पालन नहीं कर रही है, तो उसमें दुख उंगली का है। उंगली सोचेगी चलो कोई काम नहीं करना पड़ा, लेकिन ना उसे स्वाद मिलेगा, ना शक्ति मिलेगी, ना आनंद मिलेगा। दुख है पूर्ण की आज्ञा नहीं पालन करने से। तो हम सबका ये दुख है, हम जानते नहीं पूर्ण कौन है, और जानने के बाद भी पूर्ण की क्या आज्ञा है वो नहीं जानना चाहते, और आज्ञा जानने के बाद उनकी सेवा में नहीं लगना चाहते। भगवान इसलिए इस जगत में आते हैं। हम बद्ध जीवों को वास्तविक ज्ञान देने के लिए, परम कल्याण करने के लिए, ये शिक्षा देने के लिए कि हम कौन है। इसलिए हमारे महान आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं, अगर हम इतना समझ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है, उनका नित्य दास है, तो मेरे सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो दुख आरनाए। अगर जीव इतना समझ जाए, साक्षात्कार कर ले कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, तो मेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। दुख कैसे समाप्त होंगे? हम कहते हैं बाहर जो कृष्ण भक्ति को नहीं समझ रहे हैं तो उनके लिए क्या दुख है? पुनरअपि जननम, पुनरअपि मरणम, पुनरअपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु, इसके बीच में बुढ़ापा और बीमारी, अपार दुख है। तो अगर जिसने साक्षात्कार कर लिया है वो कृष्ण का नित्य दास है, क्या उसको जन्म नहीं हुए? उसका जन्म हो गया है, क्या उसको मृत्यु नहीं आएगी? अवश्य मृत्यु आएगी। क्या उसका बुढ़ापा नहीं होगा? अवश्य बुढ़ापा को प्राप्त करेगा। क्या उसे बीमारी नहीं होगी? अवश्य बीमारी होगी, ये सब उसे भी होगा, लेकिन इन सब चीजें व्यतीत नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है शरीर क्षणिक है, शरीर तो जाना है। लेकिन जो इस बात से अज्ञानी है, जो पूरा जीवन अपने आप को शरीर समझते, अपने जीवन की सारी शक्ति, समय, चेतना शारीरिक विकास में लगा दी, उनके लिए एक प्रकार का आघात होगा जब शरीर छोड़ना होगा। अचानक से कुछ भी नहीं है, सबको पता है एक दिन जाना है, लेकिन कभी तैयारी नहीं करते। तो भक्तों के जीवन में स्थिति है कि ये परिवर्तन भक्तों के जीवन में भी होंगे, लेकिन उससे व्यतीत नहीं होंगे। बहुत अच्छा उदाहरण हमारे आचार्यगण वर्णन करते हैं कि एक बिल्ली है और एक चूहा है, मतलब बिल्ली का बच्चा है और चूहा है। जब बिल्ली आके चूहे को पकड़ती है अपने दांतों से, तो चूहे के लिए क्या स्थिति है? सब समाप्त, the end, अभी बचने का कोई अवसर नहीं, साक्षात मृत्यु, मृत्यु ने से पकड़ लिया उसे, अब कोई रास्ता नहीं है, वो चूहे की स्थिति है। लेकिन वही बिल्ली जो अपने बच्चों को पकड़ती है उन्हीं दांतों से, तो उन बच्चों के लिए क्या स्थिति है? ये इस जगत की परम सुरक्षित अवस्था है, अभी मैं अपने मां के संरक्षण में हूं, इस जगत की कोई शक्ति मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती, ये स्थिति है। तो भक्तों के जीवन में भी ये परिवर्तन होगा, लेकिन वो जानते हैं कि इस जीवन में हमने वास्तविक साक्षात्कार किया है, हमने भगवान श्री कृष्ण की सेवा की है, तो इस जीवन के बाद हम भगवान कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त हो गए। तो भगवान का यहां आने का ये कारण है, इसीलिए भगवान भगवद गीता बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मैं इस जगत में आता हूं, प्रतीत होता है मैं जन्म लेता हूं, जन्म और कर्म, मैं साधारण व्यक्ति की तरह कार्य भी करता हूं, मैं जाता हूं गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए, भगवान आए हैं उज्जैन अवंतिका नगरी सांदीपनि मुनि के आश्रम में, भगवान एक राजा की तरह कार्य किए, भगवान का पारिवारिक जीवन था, तो मैं भी एक साधारण व्यक्ति की तरह कार्य करता हूं, लेकिन दिव्यम, मेरे कार्य एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं है, ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, इसलिए मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः समझना चाहिए, और ये तत्वतः शिक्षा देने के लिए मैं यहां पर आता हूं। और जो व्यक्ति इसे समझ गया कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति, वो व्यक्ति को इस शरीर छोड़ने के बाद फिर से इस जगत में आना नहीं पड़ेगा, मां एति, मेरे दिव्य धाम को वो प्राप्त होगा। तो ये भगवान की शिक्षा है, भगवान यहां पर अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से हमें ये शिक्षा देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है समझना कि भगवान कभी बनते नहीं हैं। वर्तमान जगत में ये बड़ी भूल धारणा है, लोग सोचते हैं भगवान बनते हैं, ध्यान करने से, बहुत सारा ज्ञान अर्जन करने से एक व्यक्ति भगवान बन सकता है, भगवान बन नहीं सकते, भगवान भगवान है, भगवान आके बताएं, भगवान यशोदा माई के गोद में थे तब से भगवान है, भगवान 3 महीने के तब से भगवान भगवान है, भगवान ऐसे नहीं है कि बहुत साल हिमालय गए और फिर कुछ तप किया और फिर भगवान बन गए। कोई व्यक्ति भगवान के समान नहीं बन सकता, असम ऊर्ध्व, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परम सत्य एक ही है। और भगवान श्री कृष्ण आके अपने कार्यों से अपनी शिक्षा से बताते हैं कि वो परम सत्य श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मत परतरम नान्यत, मुझसे परतत्व या मुझसे परम और कोई सत्य नहीं है। लेकिन हम बहुत सारी भूल धारणाओं में, क्योंकि भगवान की शिक्षा जैसे भगवान दे रहे हैं वैसे ग्रहण नहीं करते। भगवान कहते हैं कि मैं परम हूं, ये जो ब्रह्म ज्योति जिसे कई लोग परम मानते हैं वो मेरे शरीर की अंग कांति है, ये ब्रह्म ज्योति परम नहीं है। तो ये सारा ज्ञान निकालने के लिए भगवान आते हैं यहां पर, लेकिन हम दुर्भाग्यवश जो भगवान कह रहे हैं वो सुनने के लिए तत्पर नहीं है। तो ये जो जन्माष्टमी है ये अवसर है भगवान को तत्वतः समझना। जन्माष्टमी के दिन बहुत सारे लोग आते हैं मंदिर में, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं, कुछ प्रसाद भी खाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन घर जाके फिर से टीवी देखते हैं, फिर से प्लान बनाते हैं कि आज मेरे पास इतना है, कल और इतना हो जाएगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे सुखी रहूंगा, और फिर दूसरे साल फिर जन्माष्टमी होगी, कब मैं आऊंगा और फिर और आनंद लूंगा, फिर मैं जाऊंगा, फिर अपनी अलग अलग योजनाएं बनाऊंगा, फिर जन्माष्टमी आऊंगा। लेकिन भगवान कहते ये तत्वतः समझना, इसके लिए मैं नहीं आता हूं यहां पर, मैं आपके मनोरंजन का कोई साधन नहीं हूं। जैसे हम जाते टीवी मॉल मूवी देखने के लिए, फिर एक मैच में जाएंगे फुटबॉल मैच देखने के लिए, इस प्रकार से हम भगवान को मनोरंजन का साधन समझते, भगवान ही मनोरंजन का साधन, भगवान मनोरंजन का साधन नहीं है। भगवान वास्तव में हमारे परम कल्याण के लिए आते हैं। भगवान का एक नाम है मनोहर, भगवान वास्तव में हमें मनोरंजन नहीं, हमारे इस मन को हरने के लिए आते हैं। मन जो असत भौतिक चीजों में लगा हुआ है, ये हमारा मन जो है वो भगवान को छोड़कर नाना प्रकार की चीजों में लगा है, धन संपत्ति यश इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जिससे हमारा कोई कल्याण नहीं है, हमारा दुर्गति है। ऐसा नहीं कि इससे लाभ नहीं, इससे हानि है। जितना हम भौतिक चीजों में आसक्त रहेंगे हमको नाना प्रकार के शरीर लेने पड़ेंगे और हानि होगी। तो भगवान हमारा परम कल्याण करने, केवल भगवान कहते हैं मन मनाभव मत भक्तो, आपका मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो, मुझे नमस्कार करो। लेकिन कैसे होगा, आपने तो कह दिया मन मना, आपका मन मुझ में लगाओ, लेकिन मेरा मन तो ये सब चीजों में लगा हुआ है, कैसे मेरा मन आप में लगे। इसलिए भगवान स्वयं आके बताते हैं कि देखो ये मेरा दिव्य जीवन केवल आनंद है। भगवान यहां पर अपना वृंदावन लीला प्रस्तुत करते हैं। हम सब चाहते हैं जन्माष्टमी में हम आते हैं देखते हैं, नाचना गाना, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करना, भगवान का प्रसाद लेना, क्यों एक दिन, एक ही दिन क्यों, हर रोज हो, दिन प्रतिदिन संभव है। भगवान आके बताते हैं इसलिए आपका मन मुझ में लगाओ, भगवान में आसक्त होंगे, जब हमारी पूरी चेतना कृष्णमय हो जाएगी, मैं आवेशित चेतसाम, कृष्ण कहते हैं चेतना जब पूर्ण रूप से कृष्णमय हो जाएगी तब क्या होगा, हम इस जगत को छोड़कर भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करेंगे, वहां नित्य कृष्ण का संग है, वहां जन्म नहीं है, वहां बुढ़ापा नहीं है, वहां बीमारी नहीं है। हम सब एक व्यक्ति को खोज रहे हैं ना, जिसको हम पूर्ण रूप से शरणागत हो जाए। जैसे हमने बताया छोटी उम्र में हम मित्र के साथ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सब कुछ मेरा तुम्हारे लिए, हाँ वो भी कहेगा मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए, लेकिन थोड़े समय के बाद वो मित्रता, वो मेरा कुछ लाभ ले रहा है, मैं उसका कुछ लाभ ले रहा हूं, इस मित्रता में कोई लाभ, वो मित्र कहां था जो बचपन में स्कूल में था, पता नहीं, समाप्त। फिर थोड़े बड़े होते हैं, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी सोचते हैं मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम्हारा सब कुछ मेरे लिए, लेकिन थोड़े समय के बाद वो जीवन भी, क्योंकि अपूर्ण है ना, हम अपूर्ण है, सब हर एक जीव अपूर्ण है, कैसे पूर्ण आदान प्रदान होगा, होता नहीं। फिर ये आसक्ति पुत्र पर, पौत्र पर, इस प्रकार से नाना प्रकार से आसक्ति परिवर्तित हो रही है। हम चाहते हैं ये आसक्ति कहीं लगाएं ऐसे व्यक्ति में जो हमारे साथ पूर्ण रूप से आदान प्रदान करे। श्री कृष्ण आके बताते मैं वो पूर्ण व्यक्ति हूं जिसके साथ आप आदान प्रदान कीजिए, आप परम मित्र खोज रहे हैं, मैं परम मित्र हूं, आप पुत्र खोज रहे, मैं वो परम पुत्र हूं। आप परम स्वामी को खोज रहे, मैं वो परम स्वामी हूं। आप प्रेमी को खोज रहे, मैं वो परम प्रेमी हूं, मैं वो व्यक्ति हूं। ये भगवान कह रहे हैं कि इसलिए आपके जीवन के हर एक प्रयास मेरे प्रति संलग्न कीजिए। तो ये शिक्षा देने के लिए भगवान आते हैं, लेकिन फिर भी हम इतना मोहित हैं भौतिक चेतना में, कल भूल जाएंगे फिर से अपनी वही योजना में। तो हम सबके पास अवसर है इसको गहराई से समझना। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर आते ही नहीं हैं। आप भाग्यवान हैं, एक तो भारत भूमि पर जन्म लिया जहां पर ये शिक्षा मिलती है, कौन है परम सत्य, कृष्ण है, राम है, तो वो शिक्षा मिली, और उस शिक्षा मिलने के बाद आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहां पर आए हैं जन्माष्टमी में भगवान की कुछ सेवा करने के लिए, कुछ श्रवण कीर्तन करने के लिए। तो हमारे पास अवसर है ये पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए। तो कैसे संभव है, भगवान हमें आकर्षित करते हैं अपनी दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से। भगवान की शिक्षा जो है वो परम है, भगवान का नाम परम है, भगवान का रूप परम है, भगवान का प्रसाद परम है, भगवान के भक्त परम है। तो इन सभी चीजों से अपना संपर्क और गंभीरता से बढ़ाइए, ये उद्देश्य है जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी का उद्देश्य केवल ये नहीं है हम एक दिन आए भगवान को प्रणाम किया और फिर अपने भौतिक जीवन में चले जाए, नहीं, भगवान हमें अपने प्रति आसक्त करने के लिए आए हैं। वास्तव में जन्माष्टमी मतलब भगवान कृष्ण का जन्म, पूरा जगत मनाने आता है, लेकिन हमारे आचार्यगण वर्णन करते हैं कि ये हमारा भी जन्म हो सकता है, वास्तविक जन्म, नित्यता में जन्म। अभी हमारा जन्म है अनित्यता में। अगर इस जन्माष्टमी हम इन शिक्षाओं गंभीरता से जानेंगे और भगवान की दिव्य सेवा को स्वीकार करेंगे तो हमारा जन्म होगा नित्य जीवन में, फिर जन्म नहीं, फिर बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं, उस जीवन में हमारा जन्म हो सकता है। तो ये शिक्षा देने के लिए भगवान आते हैं। तो हमारा आप सबसे अनुरोध है कि जो आंदोलन है, ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, वो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान की शिक्षा, भगवान की वाणी भगवान से अभिन्न है। तो इस आंदोलन को गंभीरता से लीजिए, विचार कीजिए कि कैसे मैं इस जीवन में, जो ज्यादा समय नहीं है, हम प्लान करते हैं ना 60 साल के बाद भगवान की सेवा करूंगा, रिटायरमेंट अभी है, उसके बाद पूर्ण रूप से भगवान की सेवा करूंगा, 70 साल बाद भगवान की सेवा, लेकिन हमारे पास 60 सेकंड है या 70 सेकंड है ये नहीं पता है हमको। तो ऐसी योजना नहीं बनानी चाहिए। इसी जीवन में हमें भगवान की भक्ति को उनकी शिक्षाओं पर आधारित गंभीरता से ग्रहण करनी चाहिए। तो हमारा आप सबसे अनुरोध है इस आंदोलन को आप गंभीरता से ग्रहण कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, पीछे बुक टेबल है, इन शिक्षाओं को जानिए और अपने जीवन में पालन कीजिए और इस जीवन को सार्थक बनाइए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण 500 वर्ष पूर्व आए और हमारे कल्याण के लिए आदेश दिए, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होय लो जार, जिसका भारत भूमि पर जन्म हुआ है सबसे पहला कार्य है जन्म सार्थक करी, अपना जीवन सार्थक करना, करो परो उपकार, और फिर ये शिक्षा जिससे सबका कल्याण हो सकता है सबको देना। ये उदाहरण हम सबको दे रहे हैं, हमारे पास कोई बहुमूल्य चीज है जिससे किसी का जीवन बच सकता है, वो किसी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, मेरे पास दवाई है हार्ट अटैक से बचाने के लिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? क्या कहेंगे आप, कोई हार्ट अटैक से पीड़ित है और मैं दवाई नहीं दूंगा, सही कर रहा हूं या गलत? यह अपराध है, हिंसा है, हिंसा, जैसे किसी को मारना हिंसा है, इस प्रकार से मेरे पास कोई महत्वपूर्ण दवाई है जिसकी, जिससे किसी का जीवन बच सकता है, मैं नहीं दे रहा हूं तो मैं अपराध कर रहा हूं। इस प्रकार से ये शिक्षा, ये दिव्य ज्ञान जिससे हर एक जीव भवबंधन से मुक्त हो सकता है, लेकिन हम नहीं दे रहे, स्वयं भी नहीं ग्रहण कर रहे हैं ना किसी को देने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये जीव हिंसा है। तो विशेष रूप से जो भक्त समाज है उनका कर्तव्य है इन शिक्षाओं को गंभीरता से अंगीकार करना और पूर्ण प्रयत्न करना जिससे सबकी बीमारी, सबका दुख दूर हो सके। तो आप सबसे अनुरोध है कि यहाँ पर आप आए हैं, इन शिक्षाओं को जानिए, भगवान आते हैं कलयुग में अपने नाम के रूप में, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, तो भगवान अपने दिव्य नामों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन दिव्य नामों के रूप में है। आप कुछ प्रण लीजिए कि हर रोज कुछ समय ये दिव्य नामों का जप करूंगा, हर रोज ये जो दिव्य ज्ञान भगवान देने के लिए आए उसका गंभीरता से अध्ययन करूंगा, अपने जीवन में पालन करूंगा और यथासंभव इसका प्रचार करूंगा, जिससे हमारा और इस जगत का कल्याण हो सके। हरे कृष्ण। अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न नहीं है?
हरे कृष्णा। जिस भी किसी का कोई प्रश्न है वो कृपया हाथ उठाइए, ये माइक मैं आपके पास लेकर आऊंगा, आप प्रश्न पूछ सकते हैं।
इस विषय से संबंधित प्रश्न करने का प्रयत्न कीजिएगा।
हेलो हेलो।
हरे कृष्णा।
सांसारिक जीवन में रहते हुए ईश्वर को कैसे प्राप्त करें?
ये भगवत गीता में भगवान बताते हैं। भगवान अर्जुन को सांसारिक जीवन त्यागने के लिए नहीं कहते हैं, भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा अनुस्मरण कर कर आप अपने कार्य कर सकते हैं या आप अपने कार्य कीजिए। तो ये एक गहन विषय है जिसके लिए पूरा मंदिर, जो आध्यात्मिक स्कूल है, ये मंदिर इसी के लिए है कि जहाँ पर आप आएँ और आपको हम व्यवहारिक ट्रेनिंग देंगे कि कैसे भगवान को केंद्र में रख के आप अपना व्यवहारिक जीवन जी सकते हैं। तो ये शिक्षाओं को आप समझने के लिए थोड़ा गहराई से आइए। अभी एक सप्ताह बाद एक विशेष कोर्स प्रारंभ हो रहा है, 2 सत्र का, आप उस कोर्स को जरूर अटेंड कीजिए। और जैसे आपने बताया कि कैसे सांसारिक जीवन जी सकते हैं, सांसारिक जीवन वास्तव में, सांसारिक जीवन हमने बताया ये तो दुख का कारण है, तो इस जगत में कैसे सुखमय जीवन जी सकते हैं ये भगवान बताते हैं। तो भगवान को केंद्र में रख के हमारे जीवन के हरेक कार्य को कृष्ण की सेवा में अर्पण करके, उदाहरण स्वरूप सांसारिक जीवन मतलब पारिवारिक जीवन, पति है पत्नी है बच्चे हैं व्यवसाय है धन है समाज है, तो किस प्रकार से जीवन जीना, ये जीवन जीना कृष्ण को केंद्र में रख के। हमारी भूल धारणा है कि मैं ये शरीर हूं और इस शरीर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मेरे हैं, मेरी सेवा के लिए, ये भूल धारणा है। कृष्णमय जीवन मतलब मेरे परिवार के सदस्य कृष्ण के सेवक हैं, ये घर कृष्ण का है, ये संपत्ति कृष्ण की है, और कैसे ये कृष्ण की सेवा में नियोजित हो। तो ये व्यवहारिक शिक्षा है, आप रेगुलरली आएंगे तो और गहराई से समझ पाएंगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है?
हमारा प्रश्न है, कितने लोगों के पास भगवद गीता यथारूप है, कितने लोगों ने गंभीरता से अध्ययन किया है, इसका अच्छे से पढ़ाई किया है और अपने जीवन में अंगीकार किया है। तो जिन लोगों के पास नहीं है भगवद गीता, वे आज भगवान कृष्ण को अपने घर ले जाइए ये भगवद गीता के माध्यम से। कितने लोगों के पास श्रीमद् भागवतम है? हरे कृष्ण। तो जिनके पास श्रीमद् भागवतम नहीं है, ये श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण आए और जब इस जगत से अंतर्धान हुए, कृष्णे स्वधामोपगते, भगवान जब अपने स्वधाम गोलोक चले गए, धर्म ज्ञान आदि भी सह, भगवान के साथ धर्म ज्ञान इत्यादि सब चला गया, कलौ नष्ट दृशामेशा, और ये कलयुग का प्रारंभ होता है और इससे हमारी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, वास्तविक ज्ञान नहीं है, तो कैसे इस अंधकार में ज्ञान प्राप्त होगा? पुराण आरको अधुनो उदितः, ये पुराण श्रीमद् भागवतम जो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, भगवान का साहित्य अवतार है, ये सूर्य के समान है, इस अंधकार में, इस अज्ञान के अंधकार में हमें प्रकाश प्रदान करे। तो जिनके पास श्रीमद् भागवतम नहीं है, हमारा अनुरोध है आप श्रीमद् भागवतम अपने घर ले जाइए, किश्त में ले जाइए, लेकिन भगवान को अपने घर में स्थान दीजिए। सबके घर में हजारों रुपए का टीवी है, हजारों रुपए का मोबाइल है, लेकिन हमारे घर ये श्रीमद् भागवतम कृष्ण तुल्य श्रीमद् भागवतम नहीं है। तो आज थोड़ा हृदय उदार कीजिए, श्रीमद् भागवतम घर ले जाइए और उसका अध्ययन कीजिए। और ये कृष्ण नाम जो भी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, संकल्प कीजिए एक माला, दो माला, चार माला, और जो चार कर रहे हैं आठ माला, सोलह माला संकल्प कीजिए। और जो माला कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, संकल्प कीजिए कि अब व्यवहारिक रूप से कैसे कृष्ण की सेवा में लगूंगा। केवल सिद्धांतिक रूप से हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण के दास हैं, ये तो काम नहीं बनेगा। जैसे पति और पत्नी है, पति घर से आता है तो पत्नी कहेगी मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। ठीक है, प्रेम करते हैं तो कुछ दीजिए, वो आप बना लीजिए, खाना नहीं बनाएंगे हम। प्रेम का मतलब है सेवा, जैसे माँ का सेवा है ना पुत्र के प्रति, पुत्र स्कूल से आया है थक के, माँ गर्म खाना बना के देती है तो माँ को बोलना नहीं पड़ता मैं प्रेम करती हूँ, ये प्रेम स्वाभाविक है। इस प्रकार से जब हम समझ रहे हैं मैं कृष्ण का दास हूँ, भगवान की शिक्षा ले रहे हैं, भगवान का नाम जप, तो अभी व्यवहारिक सेवा, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में करना है, तो ये प्रैक्टिस है। हरे कृष्ण। तो आप नियमित रूप से आइए और यहाँ पर भक्तों का संपर्क कीजिए, कैसे हम हमारा जीवन कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। जी जी
गुरु जी, किम तत्र ब्रह्म किम ध्यात्यम किम कर्तव्यम, आप इन प्रश्नों को स्पष्ट करें।
भगवान बता दिए हैं ऑलरेडी आठवें अध्याय में, तो आप भगवत गीता यथारूप लीजिए, आठवें अध्याय में ये अर्जुन के प्रश्न है किम तद ब्रह्म। तो आप भगवत गीता लेके पढ़िए उसको, और इसके बाद अगर कोई आपके व्यवहारिक प्रश्न है तो हम उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे।
घुसा ही रहता है चित्त में, मन में, चित्त में संसार घुसा ही रहता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई भजन करना चाहे तो इसे कैसे शांत कर सकता है?
जिसका चित्त सांसारिक है, जिसका जो चित्त है वो पूरे संसार में लिप्त है, उसे भगवान का भजन करना है, लेकिन जो संसार में पूर्ण रूप से लिप्त है उसको भजन करने की इच्छा होती नहीं है, उसका तो अलग भजन चल रहा है, उसका तो भजन चल रहा है, ये भजन नहीं चल रहा है, इसलिए वो अज्ञान में है। तो इसलिए वर्णन है कि जो अज्ञान में है, अज्ञान में हमारी सारी इंद्रिया लिप्त हो, हमारी सारी इंद्रिया कार्य नहीं करती, एक इंद्रिय कार्य करती है, हमारा कान। वो अज्ञान से बाहर उठने के लिए हम कान का आधार लेते हैं, हम अलार्म रखते हैं ना, सोते हैं तब अलार्म रखते हैं, वो अलार्म हमको इस अज्ञान से बाहर उठाता। इसी प्रकार से जब हम पूरे सांसारिक जीवन में हैं, भौतिक जीवन में लिप्त हो चुके हैं, तो हमारी स्वतः इच्छा नहीं है कृष्ण की सेवा करने की, लेकिन जब हम ये दिव्य वाणी इन कानों के माध्यम से सुनते हैं तब हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है, तब हम इस जगत का वास्तविक दर्शन देख सकते हैं कि जो जीवन में हम लगे हुए हैं वो जीवन का कोई लाभ नहीं है। तो ये वाणी जब प्रवेश करेगी तब हमारा जो दृष्टि है वो भौतिक जीवन से फिर आध्यात्मिक जीवन के प्रति आगे बढ़ेगा। हरे कृष्ण। यहां हम समाप्त करेंगे।